ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है, अवेक बाप दादा के बहुत ही प्यार भरे शिक्षाएं, पुरुषार्थ क्या करना है, बाबा ने बच्चों का ध्यान भी खिंचवाया है, वरदान भी दिया है, टाइटल भी दिए हैं और कुछ बातें बाबा ने अंडरलाइन भी कराई है। बाबा ने कहा कि योग तो करते हैं लेकिन ज्वाला स्वरूप योग हो तब कर्तव्य में सफलता होगी। बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प करना है, उसको अंडरलाइन किया है। बाबा ने यह भी कहा कि संस्कार परिवर्तन भी करना है। अभी रास तो करते हो लेकिन महारास, महारास में संस्कार परिवर्तन की महारास करनी है, इस बात को अंडरलाइन करना है। फिर समय प्रमाण बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को क्या बनना है कि समय प्रमाण एक तो रहम दिल और दूसरा बाबा ने कहा दातापन का स्वरूप धारण करो। दाता बनना है किसी को, आपके पास तो इतने भंडार हैं, किसी को शक्ति चाहिए, किसको गुण चाहिए, किसको क्या चाहिए, स्नेह चाहिए, तो वो जो जैसा चाहिए वैसा ही उनको दाता बन के द्वारा देना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे इस संगम युग पर इतना बड़ा पुण्य का खाता जमा करते हो, वह पुण्य जो है आधा कल्प सत्युग त्रेता तक चलता है, फिर वो पुण्य का खाता द्वापर युग में भी आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वाइब्रेशन द्वारा भी प्राप्ति होती है, तो पुण्य का खाता भी कैसे जमा करना है वो भी बाबा ने बताया। सेवा में उमंग उत्साह तो है बच्चों का लेकिन आगे सेवा में हमें क्या एडिशन करनी है वो भी बाबा ने बताया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2024 और रिवाइज्ड मुरली की डेट है 13 फरवरी 2003, रिवाइज्ड मुरली की डेट है 13 फरवरी 2003 और आज की तारीख है 8 दिसंबर 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। तो आज बाबा किस किस को देख रहे हैं? आज बाप दादा, बाप अपने ज्ञान दाता, नोट करो, ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे। बच्चों की चार विशेषताएं, एक है आज वरदाता बाप अपने, पहला ज्ञान दाता, दूसरा गुण दाता, तीसरा शक्ति दाता, चौथा परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, किसको, किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए? हम बाबा कहते मेरे बच्चे कौन है, ज्ञान दाता है, शक्ति दाता है, तो बाबा कहते किसी को ज्ञान अमृत चाहिए, किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए? अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने, एक है खजाना, लेकिन बाबा ने कहा अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो, दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही। बाबा ने कहा वो अनुभव करना चाहती, सुन तो बहुत लिया, कुछ न कुछ सहारा ढूंढ रही, क्योंकि समय भी परिवर्तन है। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। पहले बाबा ने क्या टाइटल दिया, ज्ञान दाता है, शक्ति दाता है, गुण दाता है और संदेश वाहक है, और अभी अनेकों को सहारा देने के लिए निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों की उम्र उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। लोगों में आवश्यकता है और बच्चों में उमंग और उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। कोई प्यासा हो, एक बूंद मिल जाए तो उसको कितना अच्छा राहत मिल जाती है। तो बाबा कहते समय अनुसार अभी थोड़ा सा भी अनुभव होगा ना तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि के संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का क्या होने वाला, ये नोट करना, वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। बाबा जी को बच्चों को कहाँ ले जाते, बच्चे रहम दिल बने और खुद भी प्रत्यक्ष होंगे, बाप को भी करेंगे। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए कल्प वृक्ष के नीचे आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। पेड़ पे पानी डालेंगे, ऊपर नहीं डालेंगे, नीचे डालते हैं, क्योंकि जड़ से तो सारे पेड़ को पानी पहुंचता है ना। तो बाबा कहते आप सब कहाँ बैठे हैं, कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं, इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देव अर्थात देने वाला, देवता स्वरूप अर्थात देव देने वाला। आपका मध्य स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। द्वापुर से आते हैं, जड़ चित्रों से उनको वरदान भी मिलता है, दुआएं भी मिलती हैं और आशीर्वाद भी मिलता है। तो मध्य रूप में तीन किन किन बातें हैं, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप है ही दातापन का। आत्माओं का स्वरूप क्या है, ब्राह्मण आत्माओं का दातापन का। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हो। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करे, क्या चेक करना है, अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। कौन सी चेकिंग? अनादि रूप में दातापन के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्मा की निशानी है वह कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे या ये हो तब हम करें। दातापन के संस्कार वाली आत्मा की ये निशानी है कि वह कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो दे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार है। भंडार खुले हैं, बाबा कहते हैं ये भी चेकिंग करना है, निरंतर खुले भंडार हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे, हैं सबके पास, लेकिन कौन कितना यूज करता है, कौन कितना दातापन का स्थिति में रहता है, कौन कम करता है, वो भी तो बाबा देखते ना। तो बाबा कहते तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबर वन तो है ही ना, कभी ये भी संकल्प नहीं करो ये हो तो मैं ये करूं। आजकल बहुत होता ना, ये साधन नहीं है कैसे करेंगे, ये नहीं है होगा, ये मेरा करे तब मैं करूंगा, ये सब चलता है ना। तो बाबा जी की ये कभी नहीं संकल्प करो, ये हो तो मैं करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से, अब दातापन के संस्कार वालों को क्या प्राप्ति होती है, बाबा कहते दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। जो दूसरों के लिए करता है तो उसके लिए भी सब करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई कोई होते हैं मनुष्य जो बहुत नहीं करते हैं, बाकी तो सब करते ही है ना। तो बाबा कहते दातापन के संस्कार वालों को सब तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्मा द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती। हम दादियों की कितनी कहानियां सुनते हैं कि समय को कुछ कुछ प्रकृति ऐसे उछल पुछल कर रही है, लेकिन सेवा का क्षेत्र आता है, कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो प्रकृति भी साथ दे देती है। न सिर्फ आत्मा द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। जो ये भी सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो, सबका सहयोग भी मिलता है, सफलता भी मिलती है, प्रकृति भी सहयोग देती है। इसलिए दातापन के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता एक का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, कौन सी बात, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। तो बाबा कहते हैं सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, अब मनसा द्वारा भी पुण्य का खाता है, वाणी द्वारा कैसे हम करते, वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिव्य चिकित्सक आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। तीन बातें हो गई, चौथी बात, और संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संघ का अनुभव कराना। चार बातें बताई, पहली है वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, दूसरा परेशान को शांति स्मृति में लाना, तीसरा दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। कभी कभी हिम्मत हार जाते ना, उनको कहते नहीं नहीं ये हुआ पड़ा है, हो जाएगा, ऐसे उनको उमंग उत्साह दिलाते हैं तो वो कार्य भी सहज कर लेते हैं। तीसरा अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। चौथा है संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संघ का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करा देते। जड़ चित्रों के पास जाते हैं, कैसी भी आत्मा जाती है तो वहां का वातावरण ऐसा हो तो उनका मन ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाता है, तो पापों से भी मुक्त करा देते हैं। आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं और आप पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा किया हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे। उस समय सेवा के बहुत प्लान बनाए थे और बाबा को बताया था तो बाबा भी खुश हो रहे थे कि बच्चों ने बहुत प्यार से प्लान बनाए हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है, सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसलिए बाप दादा, क्योंकि उस समय जो प्लान बनाए थे बाबा को बताया था और उन प्लान्स को भी सेवा धूमधाम से कर रहे थे, इसलिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे। बाबा भी बच्चों की सेवा को देखते हैं ना तो बाबा को भी खुशी होती, इसलिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया। सेवा के प्लान करते हैं तो फिर बाबा को भी खुशी होती है और उनका समय भी सफल होता है, संकल्प भी सफल हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को ये लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलहनों को पूरा करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं कर सकते, बाबा भी बता रहे हैं। ब्राह्मणों की दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है, अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं कर सकते हैं, सब हो जाएगा। कई बार कहते नहीं होता है, बाबा कहते दृढ़ संकल्प करो तो हुआ ही पड़ा है, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, योग युक्त को भी क्या करना है, ज्वाला स्वरूप बनाना है। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ, योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्मा स्वतः ही आ जाएंगे। क्योंकि ज्वाला अर्थात लाइट मिलने से उनको रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। बाबा ने कहा योग तो लगा रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करना है। कौन सी बात अंडरलाइन करनी है, योग में ज्वाला रूप, योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करें। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी क्योंकि छोटे से संगठन को समीप लाया। कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम ये करते हैं हर साल, कभी कहाँ करते हैं, हर देश में अलग अलग टाइम पर करते हैं, और इस साल तो मधुबन में किया। तो जब कॉल ऑफ टाइम में एक प्रोग्राम करते ना, उसमें बड़े बड़े ग्रुप नहीं होते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल के वीआईपीस को या वीआईपीस को बिल्कुल छोटा सा ग्रुप बुलाते हैं। पहले तो 20-25 होता था, कभी 50 होता था, अभी 60-70 का ग्रुप होता है, और उनको बुलाते हैं, उनको अनुभव कराते हैं। तो यहाँ तो बाबा के घर में आकर के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए। तो बाबा ने कहा ये भी एक सेवा की विधि बहुत अच्छी है। तो बाबा ने कहा कॉल ऑफ टाइम वालों की उनकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हैं। अब सेंटर पर कितनी विशाल सेवाएं होती है, मेले करते, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, 10,000 की सभा, बहुत बड़ी बड़ी सभा होती है, 5,000 की सभा। बाबा ने कहा वो तो कर ही रहे हैं, ऐसे हर जोन हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। जब बाबा ने ये डायरेक्शन दिया था ना, तो फिर वर्गों के सभी वर्गों का वीआईपी को इकट्ठा करके एक एक ग्रुप को तैयार करके यहाँ भी लेकर के आते थे। तो बाबा ने कहा अभी क्या करना है, सभी वर्गों का एक संगठन बनाओ, कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा तो बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उनकी सेवा का उमंग बढ़ाओ। संगठन बनाओ, सेवा करो, समीप लाओ और उनके अंदर उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन वह अभी पावर को पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। हैं बहुत वीआईपी आईपी बहुत कनेक्शन में है, लेकिन बाबा कहते उनकी पावरफुल पालना करो, वो भी थोड़ी कमी है। फिर अभी तो हो ही रही है, काफी हो भी रही है, अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह आता है, ये करें ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। जब संगठन होता है उसमें होते ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बाबा कहते ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। एक है कर सकता हूँ, फिर उनको बुद्धि में बैठ जाता है कि मैं भी करूँगा, तो उमंग आता है ना। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप में देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की एरिया की जोन की सेंटर की सेवा कर रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं, अब कुछ सामने लाओ। सेवा तो बहुत कर रहे हैं, अभी बाबा कितने सामने लाओ। तो देखते हैं जब ग्लोबल समिट का प्रोग्राम होता है तो कहाँ कहाँ से कितने वीआईपीस आते रहते हैं, अभी तो नजदीक आ भी रहे हैं ना। बाप दादा खुश होते हैं, अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरनेस का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग उत्साह अच्छा है। ये देख करके बाप दादा भी खुश हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान समय वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। उस समय विदेश में कई देशों के अंदर कोई ना कोई हलचल चल रही थी, पहले तो 2000 में चल रही थी, बाद में कोई ना कोई प्रकार की हलचल चल रही थी। इसलिए बाबा ने बच्चों को कहा कि ऐसे वातावरण को देख करके आप डरते तो नहीं हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते हो ना। जब परिस्थिति आती तो उस समय डर भी जाते हैं, सोचने लगते भी कल क्या होगा। कल अच्छा होगा, अच्छा ही है और भी अच्छा ही होगा। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतना ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसी है ना, डबल विदेशी हलचल में है या अचल है। क्योंकि विदेश में उस समय कोई इंसिडेंट हुआ था, याद नहीं है मेरे को, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं डबल विदेशी हलचल में है या अचल है। अचल है ना, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। उस समय बाबा के बाद बहुत से फरवरी महीने में डबल विदेशी बहुत ज्यादा आते, तो बाबा ने उनसे हाथ उठवाया। अचल है, फिर बाबा कहते कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। मानो कुछ होता है तो भी अचल है ना। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बाबा कहते भी नहीं सोचो क्या होगा, बाबा कहते कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर परमात्म छत्र छाया है, आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ बन जाते। वाटर प्रूफ डाला हुआ है, कोई भी कितना भी पानी हो पा रहा है, लेकिन वो वाटर प्रूफ डाला हुआ तो वाटर प्रूफ बन ही जाते हैं ना। ऐसे कितने भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा सेफ है। ये बाबा बच्चों को पक्का करा रहे, ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा सेफ है। बेफिक्र बादशाह को ना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है क्या होगा, नहीं। बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। सीट से नीचे उतरते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो बाबा कहते हैं सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर नहीं है तो अपसेट है। अब कभी कहते हैं ना मेरा आज मूड ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं अपसेट हूं, तो बाबा ने जवाब दे दिया अपसेट रहना अर्थात सीट पर सेट नहीं हो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते हैं। माता क्या समझती हो, सीट पर सेट होना बैठना आता है ना। कई बार गांव की माताएं आती है ना तो उनको क्या व्हील चेयर पर बिठा देते, व्हील चेयर पर उनको बैठना नहीं आता है। वो व्हील चेयर पर जैसे ही बैठने लगती है तो इधर से उधर घूम जाते, उनको लगता है क्या हो गया, तो बाबा के उनको पता ही नहीं है कि व्हील चेयर। आजकल तो खैर सब समझ लेती है, कोई कोई चेयर ऐसी होती है तो उनको आदत ही नहीं है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा ने ऐसी सीट दिए है तो आदत नहीं होती तो बैठते नहीं है। माता क्या समझती हो, सीट पर सेट होना बैठना आता है ना। माताएं हाथ खड़ा करो, देखो बहुत माताएं बैठी है ना। अच्छा, हलचल तो नहीं होती है ना। बाप दादा सदा कंबाइंड है, जब सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड हैं तो आपको क्या डर है। बाबा साथ है तो क्यों डरते हो, अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे। कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं, ठीक है ना, कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं हो। बाप की जिम्मेवारी है, केवल विदेश की बात नहीं है, भारत की भी बात है। माताओं के सामने कितनी बातें आती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, भारत में भी कभी कुछ कुछ होता ही रहता है। तो बाबा कहते सदा क्या रखना है, कंबाइंड रूप याद रखना है, सीट पर सेट रहना है और अकेले नहीं है, परमात्म छत्र छाया है। इसलिए बाबा कहते सदा कंबाइंड रखो, अकेले तो नहीं हो, बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी। अब सुन लो, सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी, अगर थोड़ा सा भी अपसेट हुए या कुछ हुआ, मन में उदासी आ गई या आंखों में आंसू आ गए, बाबा कहते ये आपकी जिम्मेवारी है, आपके ही संस्कार है, बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। बाबा फिर कुछ भी नहीं करेगा, बाबा भल कर रहा है लेकिन अपसेट है, और तो फिर समझ भी नहीं सकते कि बाबा हमारी मदद कर रहा है। तो बाबा कहते अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। आत्मा को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। दाता स्वरूप में स्थित होने की युक्ति, आत्मा को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा कर्म करावनहार है, और ये कर्म इंद्रियां करणहार कर्मचारी है। आत्मा करावनहार है और ये इंद्रियां कर्महार कर्म करने वाली कर्मचारी है, और ये इंद्रियां करणहार कर्मचारी है। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो, ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। लेकिन क्या मर्ज रूप में रहता है कि मैं आत्मा करने वाले की, वो स्मृति बार बार नहीं रहती है, आत्मा हो ये तो पक्का है। तो बाबा कहते जो कर्म करते वो रहे कि मैं कराने वाली हूँ, कर्म इंद्रिया कर्म करने वाली है। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। क्या क्या प्राप्ति होती है? वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है, फिर मजा भी आता है। नशा भी रहता है, खुशी भी रहती है, कंट्रोलिंग पावर भी रहती है और मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होके कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि कर्म करावनहार होकर कार्य करा रही हूँ। बाबा कभी खुद भी बताते थे, साकार में भी बाबा अपने दरबार लगाते थे, मैं आत्मा राजा हूँ, ये कर्म इंद्रिया है। तो बाबा कहते ये बच्चों को भी बार बार चेक करना है कि मैं कर्म करावन होके कार्य करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसी आत्मा कर्म करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगे। नहीं तो माया आ जाती है घर भर, बाबा कितने दिनों से ये बता रहे, माया धक्का दे देती है, माया झपटा मारती है, माया क्या क्या करती। तो बाबा ने कहा कि माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगे, आपके ऑर्डर में रहेंगे। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, माया भी पूरा ध्यान रखती है कि करने वाले जो है ना अभी अलबेली हो गया, चुपके से अंदर से घुस जाती है। तो माया भी देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है, करना है आत्मा को ऑर्डर, तो माया देखती अलबेली है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती। माया का ऑर्डर आया, संकल्प कहाँ से विकल्पों में हो गए, संकल्प उलझनों में चलेगा, कभी मुख के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे वैसे शब्द या बोल दिया, तो माया भी बहुत होशियार है। तो बाबा कहती कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख्य शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। कई बार होता है ना, बहुत सी बातें होती, अरे नहीं हम तो नहीं चाहते थे, ऐसे हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, ऐसे हो गया, मैंने क्यों ऐसे किया, बाद में बोलते रहे हो गया अब क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं नहीं होगा। बाबा कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहते नहीं थे हो गया, जो चाहते वो कभी हो नहीं सकता, जो चाहते नहीं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तब ही वहाँ भी राज्य चलाएंगे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तब वही वहाँ पर भी राज्य चलाएंगे। राज्य अधिकारी के संस्कार स्वयं के लिए, ऐसा नहीं कि बाबा कहते दूसरों पे ऑर्डर, लेकिन बाबा कहते खुद के खुद ही राज्य अधिकारी बनो। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बनेंगे तब ही वहाँ भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्म इंद्रिया ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। अब कर्मचारी को बुलाओ ये काम है और वो ऑर्डर में नहीं है तो उस समय नहीं होता, टाइम के बाद आए तो क्या फायदा। कई बार ऐसा भी होता है ना, कोई काम के लिए बुलाते किसको, वो कहेगा मैं आ रहा हूँ और जब तक तो आए तब तक तो काम ही पूरा हो जाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं कि काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो कि सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए वो वैब फिर आवे। सहन शक्ति को बुला रहे सब कुछ हो गया तब आके खड़ी, आप क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि आप सहन शक्ति को बुलाओ और काम पूरा हो जाए वह फिर आए। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी क्योंकि ये हर शक्ति परमात्म देन है। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई ना। बाबा कहते हैं शक्तियां क्या हैं, बाबा द्वारा दी हुई हैं, परमात्म देन है। तो बाबा कहते परमात्म देन आपकी शक्ति हो गई ना, तो बाबा कहते हैं तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो जब भी यूज करो। ऐसे ये सब शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकार। किसी को कोई चीज दे दो उसका उसकी मर्जी कब भी यूज करे कैसे करे, तो बाबा ने सर्व शक्तियां दी हैं तो बाबा कहते उनको भी ऑर्डर में चलाओ। ऐसी सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे है ना पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसने ऑर्डर किया जो निकल गया। कई बार कहते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं था मुख से निकल गया, तो बाबा कहते फिर किसने ऑर्डर किया जो ऐसे निकल गया है। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया। देखने नहीं चाहते थे फिर भी देख लिया। कभी कभी कहते हैं अभी करना नहीं चाहते थे पता नहीं क्यों मैंने कर लिया, देखना नहीं चाहते थे देख लिया, करना नहीं चाहते थे कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है, इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे। अगर कर लिया बिना सोचे समझे और ऐसे से हो गया तो बाबा कहते उसको अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको अधीन कहेंगे। इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे, तो अधिकारी बनो अधीन नहीं। बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। वरदान, जैसे अभी मधुबन में सब खुश हो, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। मुझे गुलाब है, अब बाबा टाइटल दे रहे हैं, पहले वरदान दिया खुश आबाद रहना, टाइटल क्या है स्वराज्य अधिकारी तो है ही है लेकिन बाबा पक्का करा रहे हैं रूहे गुलाब है। देखो चारों ओर सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब है। बाबा जब बैठते थे अब एक बाप दादा पूरे हॉल में दृष्टि दौड़ाते थे और बाबा तो हर बच्चे के गुणों और शक्तियों पर देखते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं चारों ओर देखो सभी रूहे गुलाम खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं हैं, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब खुश नमा चेहरे में रहना। सदा खिले हुए गुलाब कैसे हैं? खुश नसीब खुश नमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है, आप तो बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। कई बार देखते ना वो ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के पास आते हैं, कहते इनके तो चेहरे में बहुत कुछ अलग दिखाई देता है। तो ये बाबा की कमाल है जो बाबा ने इतना भरपूर कर दिया, तो इसलिए बाबा कहते सबको यही दिखाई दे। कोई आपको देखे तो पूछे क्या मिला है, क्या मिला आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। ऐसे जैसे चित्र परिचय देते हैं ऐसे आपका चेहरा भी बाप का परिचय दे कि इन्हें बाप मिला है। अच्छा सब ठीक है, विदेश वाले भी पहुंच गए हैं, अच्छा लगता है ना। मोनी बहन न्यूयॉर्क वाले चलो हलचल सुनने से तो बच गई। मोनी बहन न्यूयॉर्क वाले भी उस समय मधुबन में आ गए थे, विदेशों में कई प्रकार के हलचल चल रहे, हलचल सेंटर्स की नहीं लेकिन हलचल थी जो देशों के अंदर चल रहा था, आपसी तनाव चल रहे थे। तो बाबा उन दिनों वातावरण भी लोग डरे हुए थे क्या होगा, कभी कुछ ना कुछ चलता था, खास करके देश एक देश दूसरे देश को धमकाता रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं चलो हलचल सुनने से तो बच गए, अच्छा किया है सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं। उसमें सारी विदेश की बहनें भी यहाँ पहुंच गई थी, बहुत अच्छा किया है। अच्छा डबल फर्नेस डबल नशा है ना, कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर हम तो डबल विदेशी हैं, डबल नशा। डबल विदेशी हाथ उठाओ, ये अभी नया ग्रुप तो अभी दो चार दिन में आएगा, ये पुराना ग्रुप तो अभी जा रहा है, न्यू ग्रुप जो है आएगा। तो डबल विदेशियों को बाबा याद कर रहे हैं, तो डबल नशा रहे। तो बाबा कहते हैं जो दिल कहता है कि अगर हम तो हैं डबल विदेशी डबल नशा, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। डबल विदेशी स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी, डबल नशा है ना, बाप दादा को भी अच्छा लगता है। बाबा कहते डबल विदेशियों के कारण तो मेरा विश्व कल्याणकारी टाइटल सिद्ध होता है, नहीं तो अगर डबल विदेशी नहीं होते तो विश्व कल्याणकारी टाइटल भी बाबा का सिद्ध नहीं होता। तो बाबा को भी अच्छा लगता है, तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अभी तो आपको मालूम है कि हर ग्रुप में बाबा के हर टर्न में डबल विदेशी भाई बहने आते हैं, उनको संख्या दी जाती है कि आप इस ग्रुप में आए, जैसे भारतवासियों को संख्या देते हैं हर ग्रुप के लिए, ऐसे डबल विदेशी भाई बहनों को भी नंबर देते हैं, उसी नंबर से वो आते हैं। तो हर ग्रुप में डबल विदेशी होते हैं। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के लिए चाहिए ना। बाबा विश्व का पिता है तो विश्व की हर देश सभी देशों की आत्माएं चाहिए ना। विश्व का पिता है ना तो विश्व के लिए चाहिए ना, सब चाहिए। माता नहीं हो तो वो भी रौनक नहीं। हाल में केवल भाई भाई बैठे हो, माता ही नहीं हो तो रौनक होगी कहाँ पर? माता ही है भाई नहीं है तो कैसा लगता है? शुरू में ऐसा होता था जब सेंटर खुले थे तो अधिकतर माता ही होती थी हर सेंटर पर, कोई मुश्किल से गिना चुना एक आध भाई होता था। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, अभी तो सभी सेंटर्स पर क्या रिजल्ट है, माताएं भी उतने नंबर में भाई भी उतने नंबर में है। तो भाई भी हैं माताएं भी हैं। तो बाबा कहते माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं है, पांडव नहीं हो तो रौनक कम हो जाती है। देखो जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा। अब काम कराना होगा कि अरे भाई चाहिए, भाई जरूर चाहिए, और भाई होते हैं तो माता और भाई मिलकर के बहुत अच्छी तरह सेवा कर लेते हैं। तो बाबा कहते अगर सेंटर पर पांडव नहीं हो तो सेंटर अच्छा लगेगा। देखो जिस सेंटर पर कोई पांडव ना हो सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो और शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। आप समझो माताएं बहने भाई सब कौन है, बाबा के सेंटर का श्रृंगार है। अगर भाई नहीं है तो श्रृंगार अधूरा है, अगर माताएं नहीं है तो सेंटर का श्रृंगार भी अधूरा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ पांडव हो शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता है। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हमारा नाम क्यों नहीं लिया, अब बाबा बोल रहे हैं तो बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। आप देखते हैं जहाँ पर छोटे बच्चे होते सेंटर पर रौनक होते, छोटे बच्चे सारा टाइम भागते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, बहुत काम करते हैं, डांस भी करेंगे क्या करेंगे, एक्टिव रहते हैं, उनके बिना भी रौनक नहीं रहती है। तो बच्चे तो घर का श्रृंगार है। तो बाबा कहते बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हमारा नाम क्यों नहीं लिया है, बाबा कहते बच्चे तो घर की रौनक है। अच्छा अभी एक सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। तो बाबा ने ड्रिल कराई, क्योंकि अब एक बाप दादा बीच बीच में ड्रिल कराते थे। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी सदा साक्षीपन की सीट पर रहने वाली अचल अडोल आत्माएं सदा दातापन की समिति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले आत्माओं को सदा खुश नसीब खुश नवा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अब इसके बाद है दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दादियों से सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे। उस समय विश्व के अंदर हलचल थी ना, तो सभी सेंटर्स पर कई सेंटर पर 108 घंटे का योग रखा था। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम फिर सोच में पड़ जाते। जब हलचल थी विश्व के अंदर तो प्रोग्राम बनाते थे, प्रोग्राम तो बना रहे पता नहीं ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो बाबा कहते अभी देखो प्रोग्राम बनाते हैं फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म भस्म होंगे और पाप कर्म का बोझ खत्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो बाबा कहते योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा। कर्मों का बोझ तो है ही है, लेकिन संस्कारों का जो बोझ है तो वो भी बाबा कहते हैं योग ज्वाला से भस्म होगा। साधारण योग से नहीं, अभी क्या है योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। थोड़ा सा संस्कार खत्म होगा फिर थोड़े टाइम के बाद थोड़े कुछ समय के बाद फिर वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर भी हड्डियां पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए, वह अभी भस्म नहीं हुए। रिजल्ट भी सुना रहे, पिछले संस्कार तो इतने कड़े हैं, उसको बदलने में भी कितना टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं कि बिल्कुल भस्म हो जाए। इसलिए संस्कार, इसलिए पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए, अभी भस्म नहीं हुए हैं। मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, मर तो गए लेकिन भस्म मीन्स बिल्कुल खत्म हो जाना। जैसे कोई मरता है तो अग्नि में जला देते हैं ना, तो मरा वो बैठा है तो बैठा है, कभी भी वो कुछ न कुछ संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो बाबा कहते मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते हैं, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते। अब मरने के बाद कोई जिंदा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है, देखो ना, नए नए खेल चलते रहते, कभी देखो तो कैसा, कभी देखो तो कैसा। तो बाबा कहते अभी संस्कारों की लीला चल रही है, संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन ये है विशेष अंडरलाइन की बात। अंडरलाइन किसको करना है? संस्कार परिवर्तन ये है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं होते तो संकल्प भी व्यर्थ चलता है और व्यर्थ समय भी व्यर्थ जाता है और नुकसान भी व्यर्थ होता है। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो ही है, परिवर्तन होने भी है, अगर परिवर्तन नहीं हो तो नुकसान होना भी है। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। रास करते हैं संस्कारों के मिलने की, बाबा कहते हैं महारास नहीं हुई है, अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? बाबा पूछते क्यों नहीं होती है महारास? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, संस्कार परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं है, उसको अंडरलाइन नहीं करते। तो बाबा कहते महारास क्यों नहीं होती है? महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है। फिर तीसरा है अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। तीन बातें बताई महाराज क्यों नहीं हो पाती, एक तो अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, और भिन्न भिन्न संस्कारों का, भिन्न भिन्न बातों का अलबेलापन है। महाराज क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अच्छा, अभी सुनेंगे आज का वरदान। कर्म योगी बन हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो कि योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन, स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज है 8 तारीख, ब्राह्मण अर्थात समझदार। बाबा कभी कहते आज कहा ना देने वाले हैं। बाबा ने कहा आज बाबा बेटा ब्राह्मण अर्थात समझदार, वह सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम योगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। अच्छा, ओम शांति शांति। 2 दिन पूर्व आप सबको एक बात बताई गई थी कि शांतिवन से मैसेज आया है कि 3 दिन के लिए फायर सेफ्टी के लिए वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम रख रहे हैं, 9, 10, 11 3 दिन का है। तो बोर्ड पर तो लिख दिया जाएगा, सभी भवन को संभालने वाले भाई और सभी डिपार्टमेंट के जिनके डिपार्टमेंट विशेष है जहां से फायर सेफ्टी की बहुत जरूरत है, वह अवश्य ही जाए शांतिवन में और ये 3 दिन की ट्रेनिंग वहां करें। ट्रेनिंग का टाइम क्या होगा ये डिटेल आज बोर्ड पर लगा दिया जाएगा और जो जाना चाहेंगे वो अपना नाम खास रिसेप्शन में शशिकांत भाई के पास नोट करा दें। लेकिन नीचे से हमें सूचना मिली कि सभी भवनों के इंचार्ज हैं वो अवश्य आए क्योंकि सभी भवनों को बहुत प्यार से संभालते हैं, तो ये सेफ्टी का साधन भी जो है उसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।